आकाशवाणी है, अब आप वैष्णवी से समाचार सुनिए। प्रवर्तन निदेशालय ने नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़े धन शोधन मामले में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी के विरुद्ध दिल्ली की राउस एवेन्यू अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया है। आरोप पत्र में कांग्रेस के विदेश मामलों के प्रमुख सैम पित्रोदा, सुमन दुबे और अन्य के नाम भी शामिल हैं। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने मामले की अगली सुनवाई के लिए इस महीने की 25 तारीख निर्धारित की है। निदेशालय ने इस मामले में अपनी जांच तब शुरू की थी जब सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने 2014 में एक शिकायत दर्ज कराई जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं पर एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड की संपत्तियों को मात्र 50 लाख रुपए में हासिल करने का आरोप लगाया गया। श्री स्वामी ने आरोप लगाया था कि एजीएल की संपत्तियों की कीमत 2000 करोड़ रुपए से अधिक है। कांग्रेस द्वारा दिए गए कथित ऋण के बदले 50 लाख रुपए में एजीएल और उसकी संपत्ति हासिल करने के आरोपों को लेकर यंग इंडिया जांच के घेरे में है। इस वर्ष 12 अप्रैल को ईडी ने दिल्ली, मुंबई और लखनऊ में 661 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियों को अपने कब्जे में लेने के लिए नोटिस जारी किया था। कांग्रेस ने नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय के आरोप पत्र पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए आरोप लगाया है कि निदेशालय का ये कदम बदले की राजनीति के अलावा और कुछ नहीं है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने इस कदम की आलोचना की। इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भाजपा के प्रवक्ता नलिन कोहली ने आकाशवाणी समाचार से कहा कि ईडी की कार्रवाई को केवल बदले की राजनीति करार देने से ये तथ्य नकारा नहीं जा सकता कि इस मामले की जांच हो रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने देश में बाल तस्करी से जुड़े अपराधों की रोकथाम और त्वरित सुनवाई के लिए कड़े दिशा निर्देश जारी किए हैं। न्यायालय ने कल उत्तर प्रदेश के बाल तस्करी मामले में आरोपियों द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश जारी किए। न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और आर महादेवन की पीठ ने देश के उच्च न्यायालयों को निर्देश दिया कि वे निचली अदालतों को निर्देश दें कि बाल तस्करी के मामलों की सुनवाई 6 महीने में पूरी की जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिकसन से टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत डेनमार्क हरित रणनीतिक भागीदारी के लिए मजबूत समर्थन व्यक्त किया। उन्होंने दोनों देशों के लोगों के लाभ के लिए विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि उन्होंने और सुश्री फ्रेडरिकसन ने आपसी हितों के क्षेत्रीय और वैश्विक विकास पर चर्चा की है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि वक्फ संशोधन अधिनियम लोगों के अधिकारों की रक्षा करने और देश के नागरिक की जमीन को अवैध रूप से हथियाने की कोशिश को रोकने की केंद्र सरकार की नीति का हिस्सा है। कोची में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि मुनम्बाम की जमीन को एक तरफा तरीके से वक्फ की जमीन घोषित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और प्रत्येक नागरिक के अधिकारों की रक्षा की जाएगी। श्री रिजिजू ने कहा कि मुनम्बाम जैसी स्थिति अब देश में कहीं भी नहीं रहनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विपक्ष लोगों को गुमराह कर रहा है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कल गुजरात के नर्मदा जिले में 11 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास किया। विदेश मंत्री ने NPLAD कार्यक्रम के अंतर्गत लाचरास गांव में स्मार्ट आंगनवाड़ी और स्मार्ट कक्षा का उद्घाटन किया। उन्होंने राजपीपला में डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र का भी दौरा किया। महाराष्ट्र सरकार और IBM टेक्नोलॉजी इंडिया के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के जरिए प्रशासनिक बदलाव के लिए कल मुंबई में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस मौके पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजीत पवार मौजूद थे। समझौते के अनुसार मुंबई, पुणे और नागपुर सहित राज्य में 3 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इसका उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हाइब्रिड क्लाउड, डेटा एनालिटिक्स, साइबर सुरक्षा और ऑटोमेशन जैसे आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके सार्वजनिक सेवा वितरण और प्रशासनिक दक्षता को बढ़ाना है। इसके साथ ही ये बुलेटिन समाप्त हुआ।